ओम शांति। 30 मई 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे 6 बजे शाम को 4 बजे 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। गूगल मीट का भी, यूट्यूब लाइव का भी, दोनों पर आप जुड़ सकते हैं जैसे आपको सीधा हो। दोनों लिंक चारों टाइम रोजाना के लिए एक ही रहते हैं। फिर भी यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो आप सामने इसी वीडियो को जो देख रहे हैं इसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का साथ, मीठा मीठा बाबा कहके मीठे बच्चे तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे। ये सत्य का संग है जहां तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। ये सत्य का संग है जहां तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। अभी हमें कहां जाना है? शांति धाम। और कहां जाना है? सुख धाम। और कहां बैठे हैं हम? ईश्वरीय धाम। तीन जगहों को, हालांकि तीनों को ही शिवालय कहा जाता है। तीनों में अंतर क्या होगा? एक शिवालय में हम बैठे हैं, शिव बाबा के पास पढ़ रहे हैं। दूसरा शिवालय जहां हम बाप के साथ रहते हैं परंतु बाप को देखते तक नहीं, बाप को जानते तक नहीं, बाप की सुनते तक नहीं, परंतु वो भी शिवालय है क्योंकि वहां पर हम विश्राम करते। और तीसरा सुखधाम जहां हम आत्माएं परम धाम से आती हैं, वहां शिव बाबा भी नहीं। यहाँ तो शिव बाबा है जहाँ हमारा बाप बैठा है, जहाँ हमारे बाप की मुरली चल रही है, जहाँ हमारे बाप का ज्ञान सुनाया जा रहा है या सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वो शिव आलय। और वहां हम परमात्मा के साथ रह रहे हैं इसलिए शिवालय। और सुख धाम के शिवालय है कौन बताएगा? वहां तो शिव बाबा आते नहीं है।
वो शिव बाबा ने स्थापन किया है।
शिव बाबा के ज्ञान के आधार पर वो चलता है। शिव बाबा की डायरेक्शन को जिन्होंने अपने जीवन में पूरी तरह धारण किया उन्हीं के अनुसार, उन डायरेक्शन के अनुसार वो चलते हैं। बल वहां बाप है नहीं, परंतु बाप की डायरेक्शन वहां पर एक्यूरेट चलती हैं। धीरे धीरे उन डायरेक्शन में कमी आती जाती है। जब संपूर्ण डायरेक्शन पर चलते हैं तब तो होता है वो संपूर्ण शिव आलय, परंतु धीरे धीरे माया रावण घुस जाती है। जैसे जैसे हमारे ज्ञान का अभाव होता जाता है, अज्ञान बढ़ता जाता है, पवित्रता का अभाव होता जाता है, अपवित्रता बढ़ती जाती है, शांति का अभाव होता जाता है, अशांति आती जाती है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि रावण वहां प्रवेश कर लेता है, धीरे धीरे शिव आलय से वो रावण आलय की तरफ भी चलना शुरू हो जाता है।
हम स्वयं को जानते हैं और यहाँ हम स्वयं को भी जानते हैं और बाप को भी जानते हैं, और घर को है तो हम अपने को भी ले जाते हैं और बाप को भी ले जाते
हैं। जहाँ हमें इस शिवालय में हम चैतन्य स्वयं को भी जानते हैं, बाप को भी जानते हैं और ब्रह्मा की सारी नॉलेज को भी जानते हैं। हमारे जीवन में आ रहे परिवर्तन के लिए पुरुषार्थ भी करते हैं और प्रारब्ध बनाते हैं। जैसा कि परम धाम में ना हम अपने आप की या स्मृति में होते हैं, ना परमात्मा की स्मृति में रहते हैं, और जब परम धाम से यहाँ आते हैं तो हमें परमात्मा के बारे में कुछ पता नहीं, कौन है, क्या है, कहाँ रहता है, क्या करता है। हमारा पेट भरा हुआ है, हमारे को खुशियां हैं, हम उन खुशियों में ही खोए रहते हैं। धीरे धीरे हमारी खुशियों को ग्रहण लगता जाता है, 2500 साल में आधा ग्रहण लग जाता है। द्वापर में आकर आधा ग्रहण हमारे जीवन में लग चुका होता है, जिसके कारण रावण का राज्य शुरू हो जाता है, अंधेरा अज्ञानता का शुरू हो जाता है, तो जिसके कारण हम पतित बनते जाते हैं। हाँ जी,
सतयुग में हम कृति कला में होते हैं, संगम पर हम कृति कला में होते
हैं, संगम पर हम कृति कला में। तीनों शिवालयों में अंतर भी हमें समझ में आ रहा है कि अभी हम इस संगम युग पर तो हम कृति कला में होते हैं, परंतु सतयुग में हम कृति कला में होते हैं और परम धाम में हम कैसे होते हैं। हाँ जी, परम धाम में हम जैसे जाते हैं वैसे आते, ना गिरते हैं ना चढ़ते, जैसे जाते हैं वैसे आते। परम धाम तो मेरे को एक ऐसा फ्रिज लगता है जहां जैसे सामान को रखो, चाहे वो 1 साल के बाद आए, चाहे वो 4999 साल के बाद आए, वो एज इट इज आएगी, जैसे गई। यूज करते हैं तभी तो कृति कला में जाते हैं। अब यदि हम ज्ञान को, गुण शक्ति को, संतुष्टता को, धैर्यता को, मधुरता को, हम इसको हम यूज नहीं करें तो हम कृति कला में नहीं जाते। यही से तो हम संस्कार बनाते हैं, यूज करते हैं तभी तो वो हमारे संस्कार बनते हैं। वहाँ तो हम जो संस्कार यहाँ से बना कर गए हैं उन संस्कारों के अनुसार चलते हैं, इसीलिए उसको शिवालय कहते हैं। परंतु धीरे धीरे उन संस्कारों में कमी आना शुरू हो जाती है। माया, ये बात हम नहीं कह सकते कि माया नहीं, माया तो आना शुरू हो गई, माया ने तो एंट्री कर ली। जैसे ही हम आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया, हमारा आकर्षण, सबसे पहला आकर्षण परम धाम से हुआ। हमारा नीचे कॉस्ट्यूम है, ये हमारा अपने कॉस्ट्यूम के प्रति आकर्षण। जिस कॉस्ट्यूम को हम छोड़ करके गए थे वो कॉस्ट्यूम हमको वहाँ याद आता है, एक्यूरेट टाइम पर 1 साल के बाद, कि नीचे हमारा कॉस्ट्यूम है। चलो जैसे नींद से जागते हैं ना, फिर याद आता है कि रात को तो हमने पकोड़े बना के रखे थे, गुलाब जामुन बना के रखे थे, उठो चलो खाएंगे। तो वो इसी, वो तो केवल 1 साल की नींद है, जितना समय की एक नींद है, उस नींद के बाद तो आना, ऊपर से नीचे गिरना माना गिरना स्टार्ट कर दिया। माया को हमने निमंत्रण दे दिया, आ जाओ खेल शुरू, अब हमारी कुश्ती चलेगी। पता नहीं है हमें क्या, हम कुश्ती करने के लिए जा रहे हैं, माया को निमंत्रण देने जा रहे हैं, ये पता नहीं, क्योंकि हम इतने अपने आप में आत्म अभिमानी बन जाते हैं, बस अब हमारे समान इस दुनिया में कोई नहीं। परंतु वहां से जैसे ही देह के संपर्क में आए, माया रावण का प्रभाव पड़ना प्रश्न। तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं, कैसे? तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं, कैसे? कैसे नीच नहीं है तुम बाप से? उत्तर, बाबा कहते बच्चे मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूं, तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूं। मैं ऊंच से ऊंच बाप, तुम बच्चों को नमस्ते करता हूं, इसलिए तुम मेरे से भी ऊंचे हो, क्योंकि मैं आकर तुम्हें नमस्ते करता हूं। मैं तुम मालिकों को सलाम करता, क्या बोलते हैं कि बाबा आकर सलाम मालिकों, मेरा सलाम मालिकों को, और आप क्या बोलते हो?
वालेकुम सलाम।
हाँ, मालिकुम सलाम, ठीक है, वो सलाम मालिक को करते हैं, आप मालिक को सलाम करते। तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते, पहले सलाम बाबा करते हैं और फिर बच्चे करते। सलाम, पहले सलाम बोला फिर मालिक बोला, सलाम मालिक को, और इधर से क्या बोला? मालिक को, मालिक का सलाम होना चाहिए अनुवाद, बाकी मुझे एक्चुअल नहीं मालूम कि क्या अनुवाद होता है। मालिकों का सलाम, मालिकुम सलाम।
भाई जी, बाबा पूछते हैं कि आप सलामत हो? हम कहते हैं हाँ बाबा, हम सलामत है।
सलाम का अर्थ नमस्ते है भाई जी, सलामत नहीं। सलाम का अर्थ है नमस्ते, जैसे हम सलाम करते हैं ना, हम नमस्ते करते हैं, वो सलाम करते हैं। सलाम करने वाला झुकना, नमस्कार करना, इस प्रकार परमात्मा को सलाम करते हैं। हम सिर्फ खुदा के आगे झुकते हैं, किसी देहधारी के आगे हम नहीं झुकते। तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हैं, क्योंकि हम तो बाप को जानते नहीं। असली कारण तो ये है, परम आत्मा आए दिखाई देता हो तो हम पहले नमस्ते कर दे, वो दिखाई तो देता नहीं, वो आकर के हमें नमस्ते करता है तो हमें समझ में आ जाता है, अच्छा बाबा आ गया, तो फिर हम करते हैं नमस्ते बाबा। अब जाने लगा है तो वो बताएगा ना कि मैं जा रहा हूँ, मेरी तरफ से आपको नमस्ते, फिर हम करते हैं नमस्ते। आते और जाते दोनों बार बाबा ही नमस्ते करते हैं, बच्चे बाद में उस नमस्ते का जवाब
देगा ना।
हाँ जी,
तो हमें पहले देखेगा।
हाँ,
मैं देखो, देखे तो पहले देखेगा, वो पहले सलाम करेगा।
बिल्कुल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। रेस्पॉन्ड भी नहीं करते हो, जवाब नहीं दिया, आपने गुस्सा आ गया बाबा पर, मैंने नमस्ते किया तुमने जवाब भी नहीं दिया, कोई बात नहीं, क्या कर लेगा बाबा? हम नमस्ते नहीं करेंगे तो क्या करेगा बाबा? कुछ कर सकता है?
डबल नमस्ते करेगा,
डबल नमस्ते करेगा बाबा, ताकि इनको समझ में आ जाए कि नमस्ते करना,
डबल करेगा।
रेस्पॉन्ड भी नहीं करते हो, जवाब भी नहीं देते हो, बाबा नमस्ते, कितने अच्छे बच्चे हैं, ये सुन करके भी हम चुप बैठे रहते हैं, चोरी नहीं करते, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते हैं और विश्व का मालिक भी बनाते हैं। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनता, वो तो एक ब्रह्मांड का मालिक है, वो इस पृथ्वी का मालिक नहीं बन सकता, वो इस विश्व का, इस ब्रह्मांड, इस संसार का मालिक नहीं बन सकता। हम डबल डबल हैं, वो एक एक जगह का मालिक है। बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाते हैं, तो बताओ बड़ा कौन ठहरा, कौन बताएगा बड़ा कौन ठहरा? बच्चे बड़े ठहरे ना, बाबा बताएगा। बच्चों के पास बाबा सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है और बच्चे ब्रह्मांड के भी मालिक हैं और विश्व के भी मालिक। फिर बाबा इस विश्व का मालिक नहीं बनता, तो बच्चे बड़े ठहरे ना।
विश्व का मालिक कैसे होता है? ब्रह्मांड का मालिक कैसे होता है?
परम धाम का मालिक, ब्रह्मांड परम धाम को कहा जाता है ना, जहां आत्माएं रहती है। देखो परम आत्मा परम धाम में पूरा समय रहते हैं, आकर हम सबको परम धाम ले जाते हैं, अपने घर ले जाते हैं, जहां हम रहते हैं उसके मालिक है। जैसे यहाँ रिक्शे वाला भी कहेगा मेरा भारत, पाकिस्तान में रिक्शे वाला कहेगा मेरा पाकिस्तान, जो मेरा कह रहा है वो उसका मालिक है ना। भाई देखो वहां वो रहता है
ना, जहाँ रहता है वहां जाने की भी जानता है, इसलिए वो मालिक है।
हम नहीं भी जानते, हमें आकर बताकर ले जाता है, हम वहां जाके रहते हैं, इसलिए हम मालिक है। जितना समय हम रहते हैं वहां मालिक है। अब किराएदार भी यदि कोई है, किराएदार भी एक महीने का किराया देने के बाद ही कहता मेरा घर है, आप उसके घर में घुस नहीं सकते बिना उसकी परमिशन। एक महीने के लिए आपने उसे रहने का अधिकार दे दिया है, ऐसे ही बाबा ने हमें कोई कम से कम एक साल परम धाम में रहे, कोई 4999 साल परम धाम में रहे, वो हमारा है, हम वहां जाके रहते। बच्चे बड़े ठहरे ना, इसलिए बच्चे फिर नमस्ते करते हैं, बाबा आप ही हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हो, इसलिए आपको नमस्ते, हमारी तरफ से नमस्ते कर दिया। मुसलमान लोग भी मालेकम सलाम कहते हैं, सलाम अलैकुम कहते नहीं है ना। तो बच्चों को ये खुशी, जिनको निश्चय है, निश्चय बिगड़ तो कोई यहाँ आ भी ना सके, फिर सवेरे कौन नींद खराब करे। यहाँ तो आप जो यहाँ जो आते हैं वो जानते हैं हम कोई मनुष्य या गुरु के पास नहीं जाते, मनुष्य बाप के पास, टीचर के पास, वह मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते, मनुष्य बाप के पास, टीचर के पास, वह गुरु के पास नहीं जाते। तुम आते हो रूहानी बाप, रूहानी टीचर, रूहानी सतगुरु के पास। वे मनुष्य अनेक हैं, वे मनुष्य तो अनेक है, ये एक ही है, ये परिचय कोई को भी था नहीं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी है कि रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते, ना जानने कारण उनको आर्पण कहा जाता है। जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं समझ सकते हैं, हम सभी आत्माओं का बाप एक ही निराकार है। वे आकर के बाप टीचर सतगुरु भी बनते। गीता में श्री कृष्ण का नाम बाला है। गीता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, सबसे उत्तम से उत्तम। गीता को ही माई बाप कहा जाता है और जो भी शास्त्र हैं उनको माता पिता नहीं कहेंगे। श्रीमद् भागवत गीता माता गाई जाती है। भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता का ज्ञान ऊंच से ऊंच बाप है तो जरूर ऊंच से ऊंच की ही गाई हुई गीता हो गई क्रिएटर। बाकी सब शास्त्र हैं उनके पत्ते, जितने भी शास्त्र हैं वो इस गीता के पत्ते, इस गीता से निकलेंगे। क्रिएशन है, इस गीता की रचना है।
बाबा ने गीता जो सुनाई वो तो संगम में सुनाई, पर बच्चे पहले दोपहर में हो गए।
हाँ तो झाड़ तो चल रहा है ना, जो गीता का ज्ञान दिया वही उसी गीता के ज्ञान को सभी आत्माएं लेकर के गई है ना, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो बुद्धिस्ट है, चाहे इस्लामी है, जो भी दुनिया का धर्म है, सभी आत्माओं ने इस समय ही तो शिक्षा ली है, इस समय ही तो आकर परमात्मा पढ़ाई को समझा है। अब जैसा समझा है वैसा लेकर गए। रचना से कभी वर्षा मिल ना सके, अगर मिलेगा भी तो अल्पकाल के लिए। दूसरे इतने ढेर शास्त्र हैं जिनके पढ़ने से अल्पकाल का सुख मिलता है, एक जन्म के लिए जो मनुष्य ही मनुष्य को पढ़ाते हैं। हर प्रकार की जो भी पढ़ाइयां हैं वह अल्पकाल के लिए मनुष्य को पढ़ाते। अल्पकाल का सुख मिला, फिर दूसरे जन्म में दूसरी पढ़ाई पढ़नी पड़े। यहाँ तो एक निराकार बाप है ही है जो 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं, कोई मनुष्य तो दे ना सके। वे तो वर्ष नॉट ए पैनी बना देते हैं। वे क्या बना देते हैं? वर्ष नॉट ए पैनी बना देते। बाप बनाते हैं पाउंड, बाप बनाते हैं पाउंड, रावण बना देता है पैनी। कौन अच्छा? जो बाबा अच्छा। जो हमारी बिल्कुल वैल्यू नहीं थी, पैनी भी, एक पैनी भी हमारी कीमत नहीं थी, उसको पाउंड बना देता। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम सब ईश्वर के बच्चे हो ना, सब व्यापी कहने से आप कुछ नहीं समझते। सब में परमात्मा है तो फिर फादरहुड हो जाता है। फादर ही फादर तो फिर वर्षा कहां से मिले, किसको दुख कौन हरे? बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। फादर ही फादर का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। अब यदि सारे हम, मैं परमात्मा है, मैं भी फादर, आप भी फादर, सारे फादर, ये तो कोई अर्थ नहीं निकलता। बाप बैठ समझाते हैं, ये है ही रावण राज्य, ये है ही रावण राज्य, ये भी ड्रामा में नूंद है, इसलिए चित्रों में भी क्लियर कर दिखाया है, इसलिए चित्रों में भी क्लियर कर दिखाया है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बाप पुरुषोत्तम बनाने आए हुए हैं, जैसे बैरिस्ट्री डॉक्टरी आदि पढ़ते हैं, जिससे मर्तबा पाते हैं, समझते हैं। इस पढ़ाई से हम बनूंगा, यहां तुम सत्य के संग में बैठे हो, जिससे तुम सुख धाम में जाते हो। सत्य धाम भी दो हैं, सत्य धाम भी दो हैं, एक सुख धाम और दूसरा शांति धाम, दोनों को सत्य धाम कहा जाता। याद में पहली बार देख रहा हूं, दोनों धाम को बाबा ने सत्य धाम कहा है। सत्य धाम दो हैं, एक है शांति धाम और एक है सुख। दोनों सत्य धाम में जाने का रास्ता एक सत्य परमात्मा ही बताते हैं और कोई बता नहीं सकता। ये है ईश्वर का धाम, बाप रास्ता है ना, जो बाप द्वारा समझ कर होशियार होते जाते हैं, उनका कर्तव्य है सर्विस करना। बाप कहेंगे तुम अभी समझ कर होशियार हुए हो तो शिव के मंदिर में जाकर समझाओ, उन्हें बोलो इस पर फूल फल मक्खन घी अक के फूल गुलाब के फूल वैरायटी क्यों चढ़ाते हैं। कृष्ण के मंदिर में अक के फूल नहीं चढ़ाते, वहां बहुत अच्छे खुशबूदार फूल ले आते हैं, और शिव के ऊपर शिव के आगे अक के फूल तो गुलाब के फूल भी चढ़ाते, अर्थ तो कोई जानते नहीं। इस समय तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, और सारी दुनिया में मनुष्यों को मनुष्य पढ़ाते, तुमको भगवान पढ़ाते हैं। तुमको कौन पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं, तुमको भगवान पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं। कोई मनुष्य को भगवान कदाचित नहीं कहा जाता, किसी भी मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। लक्ष्मी
एक भरत होने के कारण भाई जी वहाँ एक जन्म का वर्षा और यहाँ एक भी जन्म का वर्षा याद कर पड़ता है।
लक्ष्मी नारायण को भी भगवान नहीं कहा जाता, उनको देवी देवता कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता नहीं कहेंगे, भगवान एक बाप ही है, वे कोई सब आत्माओं का बाप है। भगवान बाप एक ही बाप है, वो सभी आत्माओं का बाप है, सभी कहते भी हैं हे परम पिता परम आत्मा, उनको सच्चा सच्चा नाम है शिव। और तुम बच्चे हो शालिग्राम, पंडित लोग जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो शिव का एक बहुत बड़ा लिंग बनाते हैं और उनके साथ फिर शालिग्राम भी बनाते हैं छोटे छोटे। शालिग्राम कहा जाता है आत्मा को, शिव कहा जाता है परम आत्मा को, वे सभी का बाप है, हम सब हैं भाई भाई, कैसे भी हैं ब्रदरहुड, हम सब भाई भाई हैं। बाप के बच्चे हम भाई भाई हैं, फिर भाई बहन कैसे हुए? प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से प्रजा रची जाती है वे हैं ब्राह्मण और ब्राह्मणिया, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारिया, ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है इसलिए बीके कहलाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा को किसने पैदा किया? भगवान ने। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सब क्रिएशन है, ये सब रचना है। सूक्ष्म वचन की भी रचना हो गई। बाबा मुख कमल से तुम बच्चे निकले, ब्रह्मा मुख कमल से तुम बच्चे निकले हो, ब्राह्मण ब्राह्मणिया कहलाते हो, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली अडॉप्टेड। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चे कैसे पैदा करेंगे? जरूर अडॉप्ट करेंगे। जैसे गुरु के फॉलोवर्स अडॉप्ट होते हैं उनको कहेंगे शिष्य। तो प्रजापिता ब्रह्मा सारी दुनिया का पिता हो गया, उनको कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहां चाहिए ना। सूक्ष्म वचन में भी ब्रह्मा है, नाम गाया हुआ है ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु सूक्ष्म वचन में प्रजा तो होती नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कौन है? ये सब बाप बैठ समझाते हैं। वे ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ है? तो कहेंगे ये बैठे हैं। वो दुनिया वाले क्या कहेंगे? होकर गया है। वो फिर अपने को पुजारी ब्राह्मण कहलाते हैं। अब तुम तो प्रैक्टिकल में हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन हो गए। ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है शिव बाबा ने। कहते हैं मैं इस बुद्धे तन में प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखलाता हूं। मनुष्य को देवता बनाना ये कोई मनुष्य का काम नहीं है। बाप को ही रचता कहा जाता है, बाप को ही रचयिता कहा जाता है। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी मनाई जाती है। शिव है बाप मनुष्यों का, शिव बाप है मनुष्यों को। ये भी पता नहीं है कि देवी देवता को ये राज्य किसने दिया। स्वर्ग का रचयिता है ही परम आत्मा, जिसको पतित पावन कहा जाता है। आत्मा असुल पवित्र होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है। इस समय कलयुग में सब हैं तमो प्रधान, सतयुग में सतो प्रधान थे। आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 2500 वर्ष देवताओं की डिनेस्टी चली, उनके बच्चों ने भी राज्य किया ना। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट द सेकेंड ऐसे चला आता है। मनुष्यों को इन बातों का कुछ भी पता नहीं। इस समय है सब तमो प्रधान पतित, या एक भी मनुष्य पावन हो ही नहीं सकता। सभी पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया हुई ना, इनको ही कलयुग नर्क कहा जाता है। नई दुनिया को स्वर्ग पावन दुनिया कहा जाता है, फिर पतित कैसे बनूं, कैसे बने? ये कोई नहीं जानते। भारत में एक भी मनुष्य नहीं जो अपने 84 जन्मों को जानता हो। मनुष्य मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं, मिनिमम एक जन्म। भारत को अविनाशी खंड माना गया है क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा का अवतरण होता है। भारत खंड कभी विनाश हो नहीं सकता। बाकी जो अनेक खंड हैं, वे सब विनाश हो जाएंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते, क्योंकि देवता सतो प्रधान पावन थे। अभी तो सभी पतित पुजारी बन गए, ये भी बाप बैठ समझाते हैं। भगवानों वास है ना, भगवान सभी का बाप है, वो एक ही बार भारत में आते। कब आते? पुरुषोत्तम संगम युग पर। इस संगम युग को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। इस संगम युग को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये संगम युग है। कलयुग से सतयुग, पतित से पावन बनने का। कलयुग में रहते हैं पतित मनुष्य, सतयुग में है पावन देवता। इसलिए इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। जबकि बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं, बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। तुम आए ही हो मनुष्य से देवता पुरुषोत्तम बनने। मनुष्य को ये भी नहीं जानते कि हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं, वहां से आते हैं पाठ बजाने। नाटक की आयु 5000 वर्ष। ये जो विश्व का नाटक है, इस नाटक की आयु, ये पा हटा देना है, इस नाटक की आयु 5000 वर्ष है। हम इस नाटक में पाठ बजाते हैं, इतने सब मनुष्य पाठधारी हैं। ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, कभी बंद होने का नहीं। पहले पहले इस नाटक में सतयुग में पाठ बजाने आते हैं देवी देवता धर्म, फिर त्रेता में क्षत्रिय। इस नाटक को भी जानना चाहिए। ये नाटक है ना, कांटों का जंगल। ये है ही कांटों का जंगल। सब मनुष्य दुखी। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। कलयुग में ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में कितने होंगे? बहुत थोड़े। आदि सनातन सूर्यवंशी देवी देवता ही। ये पुरानी दुनिया अब बदलने। मनुष्य सृष्टि से फिर देवताओं की सृष्टि होगी। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, परंतु अब अपने को देवता कहलाते नहीं। अपने धर्म को ही भूल गए हैं। ये सिर्फ भारतवासी ही हैं जो अपने धर्म को भूल गए। हिंदुस्तान में रहने कारण हिंदू कह देते हैं। देवताएं तो पावन देव थे, ये पतित इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते। देवताओं की पूजा करते 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 रहते हैं, अपने को पापी नीच कहते रहते हैं। अब बाप समझाते हैं, तुम ही पूज्य थे, सिर्फ तुम ही पुजारी बने हो, पतित बने हो। हम सो का अर्थ भी समझाया है, वे कह देते आत्मा सो परम आत्मा, ये है झूठा अर्थ, झूठी काया झूठी माया झूठा ये संसार। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे, सत्य खंड की स्थापना बाप करते हैं, झूठ खंड फिर रावण बनाते, ये भी बाप आकर समझाते, ये बात भी बाबा आकर समझाते। रावण तो कुछ नहीं बताते, आत्मा क्या है परमात्मा क्या है ये भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम आत्मा बिंदी हो, तुम्हारे में 84 जन्मों का पार नूदा हुआ है, तुम्हारे में 84 जन्मों का पार नूदा हुआ है। हम आत्मा कैसी हैं ये कोई नहीं जानते, हम बैरिस्टर हैं फलाना है ये जानते हैं, बाकी आत्मा को एक भी नहीं जानते। बाप ही आकर पहचान देते हैं, तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार अविनाशी नूंदा हुआ है, जो कभी विनाश नहीं होता है हो सकता। यही भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, सुख ही सुख था, अभी दुख ही दुख है। ये बाप नॉलेज देते हैं, ये बाप नॉलेज देते हैं। तुम बच्चे बाप द्वारा अभी नई नई बातें सुनते हो, सबसे नई बात है, सबसे नई बात क्या है, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना, जो दुनिया में कोई भी नहीं चाहता कि हम मनुष्य से देवता बने। तुम जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, भगवान पढ़ाते हैं। उस भगवान को सर्वव्यापी कहना ये तो गाली देना है। अब आप समझाते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आकर भारत को स्वर्ग बनाता, रावण नर्क बनाता है, ये बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। कितनी कमाल की बात है, ये बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। बाप ही आकर तुम को मनुष्य से देवता बनाते हैं। गायन भी है मूत पलीती कपड़ धोई, वहां विकार होता नहीं, वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी है विशेष वर्ग, बुलाते भी हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, हमको रावण की रावण ने पतित बनाया है, परंतु जानते नहीं कि रावण कब आया क्या हुआ, रावण ने कितना कंगाल बना दिया, भारत 5000 वर्ष पहले कितना साहूकार था, सोना सोने हीरे जवाहरों के महल से कितना धन था, अभी क्या हालत, जो सिवाय बाप के सिरताज कोई बना ना सके, कोई बना ना सके। अभी तुम कहते हो शिव बाबा भारत को हेवन बनाते हैं, अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है, तुम वानप्रस्थी हो, अब जाना है वापस, इसलिए अपने को आत्मा समझो, माम के कर याद करो, तो तुम्हारे पाप या विकर्म भस्म हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस नशे और खुशी में रहना, पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है, वापस घर जाना है। इसलिए बाप की याद से सब पापों को भस्म करना, सब पापों को भस्म करना है। वर्दा, नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी लगाओ और जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना लो। चाबी मिली और माला माल बन गए, तो जितना माला माल बनते हो उतनी खुशी स्वतः रहती है। ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखुट अविनाशी बहता ही रहता है। वो सर्व खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती, किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती। स्लोगन, बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। अगस्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। जितना पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी। अगर पवित्रता कम तो पर्सनैलिटी भी कम। ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती, लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध से, ऐसे अपवित्रता का भी पांच विकारों से गहरा संबंध। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र हमारे अंदर ना रह जाए, अंश से फिर वंश बन जाए। इसलिए पवित्रता की पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने वाले तब कहेंगे अच्छा ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213109 8 we were what the fuck call carrying phone name phone